एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमें मतलब हैरत में डाल देती है। डायनासोर की दुनिया।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे मशहूर जीवाश्म विज्ञानी डेविड नॉर्मन। हम उनकी किताबों, खासकर डायनासोर्स और डायनासोर्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन से मिली जानकारियों पर ही आज बात करेंगे। ये किताबें ना डायनासोर के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल ताज़ा कर देती हैं।
लेकिन ये पुरानी हड्डियाँ आज क्यों मायने रखती हैं? क्या ये सिर्फ म्यूजियम की चीज़ें हैं या फिर वो फिल्मों वाले मॉन्स्टर?
नहीं नहीं, यही तो बात है। डायनासोर हमें पृथ्वी पर जीवन के उतार चढ़ाव, है ना, विकास की वो अविश्वसनीय कहानी, और हाँ, यहाँ तक कि जीवन के अचानक खत्म हो जाने की हकीकत भी सिखाते हैं। और नॉर्मन का काम दिखाता है कि कैसे पिछले कुछ दशकों की खोजों ने इन जीवों की छवि पूरी तरह बदल दी है।
कैसे? मतलब पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं?
पहले सोचते थे कि वो सुस्त, बेवकूफ, रेंगने वाले जीव थे, लेकिन अब पता चला है कि वो फुर्तीले, जटिल और बेहद बेहद कामयाब जानवर थे।
अच्छा, तो ये सिर्फ पुरानी हड्डियों की कहानी नहीं है बल्कि विज्ञान की एक रोमांचक जासूसी कहानी भी है कि कैसे हम अतीत के रहस्यों को सुलझाते हैं। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं।
जरूर।
पहले बात करते हैं इस कहानी के सूत्रधार डॉक्टर डेविड नॉर्मन की। ये कोई मामूली वैज्ञानिक नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं। वो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और वहाँ का जो मशहूर सेडविक म्यूजियम है ना, उसके निदेशक भी रह चुके हैं। मतलब 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव।
4 दशक बहुत लंबा समय है।
हाँ, और उनका खास काम रहा है ऑर्निथिशियन डायनासोर पर। ये वो पक्षी कूल्हे वाले डायनासोर थे जिनमें इग्वानोडॉन जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। लेकिन नॉर्मन सिर्फ लैब में या खुदाई में ही माहिर नहीं है।
तो फिर
उनकी सबसे बड़ी खूबी है मुश्किल वैज्ञानिक बातों को आम लोगों तक पहुँचाना। बहुत आसान तरीके से समझाते हैं वो।
हाँ, ये बहुत जरूरी हुनर है। तो वो सिर्फ हड्डियों का अध्ययन नहीं करते?
नहीं, वो उनके व्यवहार, उनके मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर की गर्मी का सिस्टम कैसा था, और सबसे बड़ी बात, डायनासोर और आज के पक्षियों के बीच के रिश्ते को समझने में उन्होंने कमाल का काम किया है।
अच्छा, पक्षियों से रिश्ता, इस पर आगे बात करेंगे।
बिल्कुल। वो एक तरह के वैज्ञानिक जासूस है जो बिखरे सुरागों से पूरी कहानी बुनते हैं।
तो नॉर्मन डी किताबें इसी जासूसी का नतीजा है?
हाँ बिल्कुल। वो हमें डायनासोर की दुनिया का एक सच्चा वैज्ञानिक नजरिया देती हैं, जो फिल्मों या कॉमिक्स की कहानियों से बहुत अलग है और सच कहूं तो ज्यादा हैरान करने वाला है।
मतलब वो मिथकों को तोड़ते हैं, जैसे हर बड़ी छिपकली डायनासोर नहीं थी।
हाँ, यही उनका मकसद है। वो साफ करते हैं कि डायनासोर एक विशिष्ट समूह था।
ठीक है, तो किताबों का निचोड़ क्या है? क्या है वो केंद्रीय विचार?
निचोड़ ये है कि जिन्हें हम कभी धीमी रफ्तार वाले पिछड़े जीव मानते थे, वो असल में कमाल के जानवर थे। गतिशील, विविध, जटिल
और कामयाब भी, जैसा आपने कहा।
हाँ, जरा सोचिए, 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करना, ये कोई मजाक नहीं है, ये जबरदस्त कामयाबी की कहानी है।
16 करोड़ साल, विश्वास करना मुश्किल है।
नॉर्मन हमें डायनासोर की खोज के बिल्कुल शुरुआती दिनों से लेकर उनके अलग अलग प्रकार, उनकी शारीरिक बनावट, वो कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कैसे बच्चे पालते थे और आखिरकार कैसे गायब हो गए, इस पूरी यात्रा पर ले जाते हैं।
और इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया पर जोर है ना? कैसे पता लगाते हैं ये सब?
बिल्कुल, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कैसे वैज्ञानिक सिर्फ हड्डियों, दांतों, पैरों के निशानों, यहाँ तक कि जीवाश्म बन चुके गोबर से भी अतीत की पहेलियां सुलझाते हैं।
गोबर से भी? अरे वाह।
हाँ, ये किताबें दिखाती हैं कि सच कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है।
तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डायनासोर बला क्या है? क्या हर पुरानी बड़ी छिपकली डायनासोर थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। नामन यही साफ करते हैं, डायनासोर जानवरों का एक खास समूह था।
खास कैसे? मतलब क्या चीज उन्हें अलग बनाती थी?
उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी सीधी चाल, इरेक्ट पोस्चर।
सीधी चाल मतलब?
सोचिए, छिपकली या मगरमच्छ के पैर साइड में फैले होते हैं, है ना?
हाँ, साइड में।
लेकिन डायनासोर के पैर सीधे शरीर के नीचे थे, जैसे हमारे या पक्षियों के होते हैं।
अच्छा, ये तो बड़ा फर्क है।
हाँ, और ये मुमकिन हुआ उनकी कूल्हे की खास बनावट की वजह से। उनके हिप सॉकेट में एक छेद होता था और जांग की हड्डी फीमर सीधी जुड़ती थी। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था।
और शायद इसीलिए वो इतने सफल रहे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से चल फिर सकते थे।
बिल्कुल, इसने उन्हें ज्यादा तेजी और कुशलता से चलने फिरने की ताकत दी। शायद यही उनके लंबे राज का एक बड़ा कारण बना।
नॉर्मन शुरुआती खोजों के बारे में भी बताते हैं, वो ओवन वगैरह।
हाँ, वो 19वीं सदी में ले जाते हैं, जब विलियम बकलैंड, गिदॉन मेंटल जैसे लोगों ने पहली बार इन अजीब हड्डियों को खोजा। और फिर सर रिचर्ड ओवन ने 1842 में इन्हें नाम दिया डायनासोरिया, जिसका मतलब था भयानक छिपकली।
भयानक छिपकली, नाम तो दमदार है।
हाँ, लेकिन उस वक्त की समझ आज के मुकाबले बहुत कम थी, थोड़ी कल्पना ज्यादा थी। जैसे गिदॉन मेंटल ने इग्वानोडॉन के अंगूठे के कांटे को उसकी नाक पर सींग समझ लिया था।
अच्छा, गलतियां भी हुई मतलब। अच्छा, वो क्या थे फिर?
वो सरीसृपों की अलग शाखाएं थी। डायनासोर की कहानी सिर्फ जमीनी जीवों की है, जिनके सबूत हमें जीवाश्मों से मिलते हैं, हड्डियां, दांत, अंडे, घोंसले, पैरों के निशान।
और आपने कहा त्वचा के छाप भी।
हाँ, कभी कभी वो भी मिल जाते हैं।
कमाल है। अच्छा, अब आते हैं डायनासोर परिवार की विविधता पर। ये कितने तरह के थे?
इनकी विविधता तो अद्भुत थी। नॉर्मन बताते हैं कि इन्हें मुख्य रूप से दो बड़े ग्रुप में बांटा जाता है, उनके कूल्हे के बनावट के आधार पर। सोरिस्किया, छिपकली कूल्हे वाले, और ऑर्निथिस्किया, पक्षी कूल्हे वाले।
सोरिस्किया और ऑर्निथिस्किया, ठीक है। सोरिस्किया में कौन थे?
सोरिस्किया में दो तरह के सितारे थे। एक तो थेरोपॉड, ये दो पैरों पर चलने वाले मांसाहारी थे, छोटे से कॉम्पस ऑग्नेथस से लेकर वो खूंखार टीरेक्स तक।
टीरेक्स, हाँ, उसे कौन नहीं जानता। पक्षी मांसाहारी डायनासोर से निकले।
हाँ, इसी थेरोपॉड समूह से।
और दूसरे थे सोरोपोडोमॉर्फा, वो लंबी गर्दन वाले, चार पैरों पर चलने वाले शाकाहारी, धरती के अब तक के सबसे बड़े जमीनी जानवर, जैसे डिप्लोटिकस या ब्रैकियोसोरस। जरा सोचिए उनका आकार।
हाँ, वो तो विशाल काय थे।
ठीक है, ये तो हुए सोरिस्टिया। अब वो दूसरे वाले ऑर्निथिस्टिया।
ऑर्निथिस्टिया समूह के सभी सदस्य शाकाहारी थे, और उनमें भी गजब की वैरायटी थी।
अच्छा, शाकाहारियों में भी इतनी वैरायटी?
बहुत। कुछ कवच वाले थे, जैसे पीठ पर प्लेटो वाला स्टेगोसोरस, या फिर वो टैंक जैसा एंकलोसोरस।
हाँ हाँ, देखे हैं म्यूजियम में।
कुछ बत्तक चोंच वाले थे, जैसे हेड्रोसोर, और कुछ के सिर पर सींग या झालरें थी, जैसे मशहूर ट्राइसेराटॉप्स।
ट्राइसेराटॉप्स मेरा पसंदीदा।
या फिर वो मोटी खोपड़ी वाले पैकीसेफेलोसोर, जो शायद सिर लड़ाते हो।
एना कमाल की विविधता। और नॉर्मन बताते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था, मतलब हर बनावट का कोई कारण था।
बिल्कुल, उनकी शारीरिक बनावट उनके जीने के तरीके से जुड़ी थी। लंबी गर्दन ऊंचे पेड़ तक पहुंचने के लिए, कवच दुश्मनों से बचने के लिए, नुकीले दांत मांस फाड़ने के लिए, और चपटे दांत पत्ते पीसने के लिए। हर चीज का कोई मतलब था।
एक बड़ा सवाल जो हमेशा से रहा है, डायनासोर गर्म खून वाले थे या ठंडे खून वाले, मतलब हमारी तरह एंडोथर्मिक थे या छिपकलियों की तरह एक्टोथर्मिक?
हाँ, ये एक बहुत बड़ी बहस रही है वैज्ञानिकों के बीच। नॉर्मन इसके दोनों पहलू दिखाते हैं।
अच्छा, क्या सबूत हैं गर्म खून के पक्ष में?
कई बातें हैं। एक तो उनकी सीधी चाल, जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है। फिर हड्डियों में तेज ग्रोथ के निशान मिले हैं। शिकारी और शिकार का अनुपात भी इशारा करता है।
शिकारी शिकार का अनुपात, वो कैसे?
गर्म खून वाले शिकारियों को ठंडे खून वालों के मुकाबले ज्यादा खाना चाहिए होता है ना? तो अगर शिकारी कम और शिकार ज्यादा थे, तो ये गर्म खून की तरफ इशारा हो सकता है। और ये भी कि वो ठंडे ध्रुवीय इलाकों में भी पाए गए हैं, वहां ठंडे खून वाले जीव कैसे रहते?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
लेकिन फिर ठंडे खून के पक्ष में क्या तर्क है? कुछ डायनासोर इतने विशाल थे कि उनका शरीर अपने आप ही गर्मी बनाए रख सकता था, जिसे गिगेंटोथर्मी कहते हैं। और कुछ हड्डियों में ग्रोथ रिंग्स भी मिली हैं, जैसे पेड़ों में होती हैं, जो शायद धीमी या मौसमी ग्रोथ का इशारा करती हैं।
तो फिर आखिरकार क्या नतीजा निकला, गर्म या ठंडे?
तो शायद सच बीच का है। नॉर्मन का मानना है कि सभी डायनासोर एक जैसे नहीं थे। हो सकता है कुछ गर्म खून वाले हों, कुछ ठंडे, और कुछ बीच के।
बीच के, उसे क्या कहते हैं?
मीजोथर्मी। ये दिखाता है कि प्रकृति कितने अलग अलग समाधान निकाल सकती है। जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही जैसा हो।
दिलचस्प। अच्छा, और उनके खाने पीने का क्या? दांतों से तो पता चलता ही है, पर और कैसे जानते हैं?
कभी कभी पेट में बचा खाना मिल जाता है, हालांकि ये बहुत दुर्लभ है। या फिर पेट के पत्थर, गैस्ट्रोलिथ कहते हैं उन्हें।
पेट के पत्थर, वो क्यों?
कुछ शाकाहारी डायनासोर्स शायद कंकड़ निगल लेते थे ताकि पेट में खाना पीसने में मदद मिले, जैसे आज कुछ पक्षी करते हैं।
अच्छा, जैसे मुर्गी कंकड़ खाती है।
बिल्कुल वैसी ही बात। और क्या वो अकेले घूमते थे या झुंड में?
हाँ, ये भी सवाल है। फिल्मों में तो झुंड दिखाते हैं
और सबूत भी यही कहते हैं। पैरों के निशान बताते हैं कि कई बार ढेर सारे डायनासोर एक साथ एक ही दिशा में चल रहे थे। ये तो झुंड का पक्का सबूत है।
पैरों के निशान झुंड का सबूत कैसे हुए?
अगर एक ही जगह पर एक ही समय की चट्टानों में एक ही दिशा में जाते हुए कई सारे पैरों के निशान मिले तो इसका मतलब है कि वो साथ चल रहे थे।
अच्छा, और वो एग माउंटेन वाली बात?
हाँ, मोंटाना में मिली एग माउंटेन जैसी जगह जहां माया सौरा अच्छी माँ छिपकली के अनगिनत घोंसले, अंडे और बच्चे मिले हैं। ये दिखाता है कि वो कॉलोनियों में रहते थे और अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे।
अच्छी माँ छिपकली, नाम भी बढ़िया है। तो मतलब वो बच्चों की परवाह करते थे?
ऐसा ही लगता है। ये उस पुरानी सोच को तोड़ता है कि सरीसृप अपने बच्चों की परवाह नहीं करते।
लेकिन फिर इस शानदार युग का अंत कैसे हुआ? लगभग 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल के आखिर में ज्यादातर डायनासोर अचानक गायब हो गए। क्यों, क्या हुआ था?
हाँ, ये कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। नॉर्मन इस केपीजी विलुप्ति घटना के पीछे सबसे तगड़े सिद्धांत को समझाते हैं, एक विशाल शुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना।
एस्ट्रॉइड का टकराना? हाँ, मैंने सुना इसके बारे में।
बिल्कुल, 1980 में अल्वारेस पिता पुत्र ने ये थियरी दी थी और इसके सबूत भी चौंकाने वाले हैं।
क्या सबूत हैं?
दुनिया भर में उस समय की चट्टानों की परत में इरिडियम नाम का तत्व बहुत ज्यादा मिलता है। ये तत्व पृथ्वी पर कम पर एस्टेरॉइड्स में आम होता है।
अच्छा, ये तो सीधा कनेक्शन लगता है।
हाँ, साथ ही शॉक्ड क्वार्ट्ज जैसे खनिज जो सिर्फ जबरदस्त टक्कर से बनते हैं। और सबसे बड़ा सबूत मेक्सिको के युकटन प्रायद्वीप के नीचे छुपा लगभग 18 किलोमीटर चौड़ा चिक्सुलुब क्रेटर।
180 किलोमीटर, बहुत बड़ा है ये तो।
हाँ, और वो ठीक उसी समय बना था 6.5 करोड़ साल पहले। ये तो जैसे स्मोकिंग गन मिल गई हो।
तो इस टक्कर का असर क्या हुआ होगा?
सोचिए, भयानक आग, विशाल सुनामी और सबसे खतरनाक एक परमाणु सर्दी। टक्कर से उड़ी धूल और धुएं ने शायद महीनों या सालों तक सूरज को ढक लिया होगा।
सूरज ढक गया तो फिर?
तापमान गिरा, पौधे मर गए और पूरी फूड चेन ढह गई। बड़े जानवरों के लिए बचना नामुमकिन हो गया।
रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया?
यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। नॉर्मन जोर देकर कहते हैं कि डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए।
क्या मतलब, कैसे?
हाँ, ये सबसे क्रांतिकारी बात है। एक वंश बच गया।
एक वंश बच गया?
हाँ।
कौन सा?
छोटे पंख वाले थेरापॉड डायनासोर की शाखा बच निकली और विकसित होकर पक्षी बन गए।
पक्षी मतलब चिड़िया?
हाँ, चिड़िया, कबूतर, चील सब। चीन में मिले पंखों वाले डायनासोर के जीवाश्मों ने इसे साबित कर दिया है। जैसे साइनोसॉरोप्टेरिक्स, उनके जीवाश्मों में साधारण रो से लेकर उड़ने वाले पंखों तक सब मिला है।
तो तकनीकी तौर पर आसमान में उड़ती हर चिड़िया एक जीवित डायनासोर है।
बिल्कुल, तकनीकी तौर पर यही सच है। सोचना ही कितना अजीब और अद्भुत है ना।
हाँ, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली कि विज्ञान कभी रुकता नहीं है ना।
बिल्कुल, विज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। डायनासोर के बारे में हमारी समझ लगातार बदली है और बदल रही है। नई खोजें पुरानी धारणाओं को चुनौती देती हैं। ये सुस्त छिपकलियों से फुर्तीले पक्षियों के पूर्वजों तक का सफर यही दिखाता है।
और दूसरी बात कि डायनासोर नाकामयाब नहीं बल्कि जबरदस्त कामयाब थे।
हाँ, 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करना कोई छोटी बात नहीं। वे सिर्फ वक्त नहीं काट रहे थे, वे धरती के राजा थे। उनका अंत किसी अंदरूनी कमजोरी से नहीं बल्कि एक बाहरी तबाही से हुआ।
और तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात कि डायनासोर और पक्षियों का रिश्ता अब एक स्थापित वैज्ञानिक सच है।
हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये विलुप्ति की कहानी को बदल देता है। ये पूरी तरह खत्म होने की नहीं बल्कि बचने और बदलने की कहानी बन जाती है। अगली बार किसी कबूतर को देखें तो सोचिएगा।
हाँ, अब तो जरूर सोचूंगा। चौथी बात ये कि जीवाश्म विज्ञान असल में जासूसी का काम है।
बिल्कुल,
वैज्ञानिक कैसे बिखरे हुए टूटे फूटे सुरागों से करोड़ों साल पुरानी दुनिया की तस्वीर बनाते हैं, ये वाकई कमाल है। हर हड्डी, हर निशान एक पहेली का हिस्सा है।
और पांचवी, वो गहन समय वाली बात।
हाँ, गहन समय को समझना जरूरी है। डायनासोर की कहानी समझने के लिए हमें लाखों करोड़ों साल के पैमाने पर सोचना पड़ता है। हमारा इंसानी इतिहास तो इसके सामने पलक झपकने जैसा है। ये हमें विनम्र बनाता है।
नॉर्मन के काम से कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, कुछ यादगार बातें।
हाँ, कई हैं। जैसे उनका ये कहना कि डायनासोर सिर्फ कोई भी पुरानी बड़ी छिपकली नहीं है, वे अपनी खास सीधी चाल से पहचाने जाने वाले विशिष्ट जीव हैं। ये वैज्ञानिक सटीकता पर जोर देता है।
हाँ, ये जरूरी है कि हम सही समझें। और
एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई, डायनासोर के बारे में हमारी समझ पत्थर की लकीर नहीं, ये एक जिंदा बदलता हुआ विज्ञान है जहां हर नई खोज पुरानी सोच को हिला सकती है। ये हमें हमेशा सीखते रहने की प्रेरणा देता है।
सही बात है, विज्ञान बदलता रहता है। और वो पक्षियों वाली बात,
हाँ, शायद सबसे गहरा विचार। डायनासोर असल में कभी गायब नहीं हुए। उनकी विरासत देखनी है तो बस आसमान की तरफ देखिए, पक्षी उनके सीधे वंशज हैं। ये नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल। और ये भी कि हर जीवाश्म एक कहानी कहता है, पर उसे सही पढ़ने के लिए कई विज्ञानों को मिलकर काम करना पड़ता है।
हाँ, ये दिखाता है कि बड़ी खोजें अक्सर टीम वर्क से होती हैं। जीव विज्ञान, भू विज्ञान, रसायन शास्त्र सब मिलकर काम करते हैं।
और आखिर में उनकी खूबसूरती सिर्फ आकार में नहीं है।
बिल्कुल, डायनासोर का असली जादू उनके आकार या खूंखारपन में नहीं, बल्कि उनकी अविश्वसनीय विविधता और जीवन की चुनौतियों के उनके अनोखे समाधानों में है। ये हमें सतही चीजों से आगे देखने को कहता है।
तो इस सब से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? कुछ है ऐसा?
हाँ, बिल्कुल है। पहली बात तो वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक नजरिया विकसित करना। सबूतों को कैसे परखें, दावों पर सवाल कैसे उठाएं, ये हर जगह काम आता है ना?
आजकल की फेक न्यूज की दुनिया में तो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। दूसरा, ये हमें विकास, अनुकूलन और विलुप्ति के बारे में गहराई से सिखाता है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संकट का सामना कर रहे हैं, तो केपी जैसी घटना एक चेतावनी है, एक सबक है कि चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं।
ये गंभीर बात है। और वो गहन समय वाली बात।
हाँ, तीसरा, ये हमें गहन समय का एहसास कराता है। करोड़ों साल के सामने हमारा वजूद कितना छोटा है। ये हमें विनम्र बनाता है और शायद अपने ग्रह के प्रति ज्यादा जिम्मेदार महसूस कराता है।
और चौथा, वो अलग अलग विज्ञानों का मिलना।
हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान की अलग अलग शाखाएं कैसे मिलकर काम करती हैं। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग जरूरी है। ये नवाचार के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है।
तो अगर सार निकालना हो तो डेविड नॉर्मन के काम से सबसे बड़ा सबक क्या है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि डायनासोर की असली कहानी किसी भी फिल्म या कल्पना से ज्यादा हैरतअंगेज और विस्मयकारी है। वो सुस्त या बेवकूफ नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सफल और जटिल जीव थे।
और ये भी कि अंत हमेशा अंत नहीं होता। डायनासोर की कहानी पक्षियों के रूप में जारी है। ये बचने और बदलने की एक असाधारण दास्तान है।
बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिक समझ हमेशा विकसित होती है। आज जो हम जानते हैं, कल वो और बेहतर हो सकता है। इसलिए हमेशा सीखने और सवाल पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सही कहा। अंत में डायनासोर हमें अतीत की एक खिड़की देते हैं, जिससे हम झांक कर देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कितना अद्भुत, कितना विविध और कितना लचीला रहा है। ये वैज्ञानिक खोज की शक्ति का उत्सव है।
और हाँ, शायद अगली बार किसी चिड़िया को देखकर हम उसे सिर्फ एक आम पक्षी नहीं, बल्कि करोड़ों साल के इतिहास का एक जीवित प्रतीक समझेंगे। ये सोच ही रोमांचक है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकृत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।